हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी तारा हैरानी से कहने लगी थी, तरतराना, कौन तराना? तभी आमन ने कहना शुरू कर दिया था, वो सभी जिन्नों ने मिलकर हमारी बेटी का नाम तराना रखा है। अब जैसे ही करिश्मा जी ने, वो थोड़ा सा चिढ़ गई थी और कहने लगी थी, आप लोगों ने मेरी बेटी का नाम भी रख दिया, लेकिन मुझे इसके बारे में पूछना तो दूर की बात है, कुछ डिटेल्स भी लेना जरूरी नहीं समझा। तारा परी को इस तरह से गुस्सा करते हुए देखकर करिश्मा जी उसे कहने लगी थी, बेटी हम तुमसे नहीं पूछ सकते थे, ये हमारे जिन्नातों का रूल रेगुलेशन है, अगर जिन अंश पैदा होगा तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लाखों हजारों तादाद के जिन ही सोच समझ कर रखते हैं, और उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत नाम दिया है तुम्हारी बेटी को, तराना, बिल्कुल सुरीला, बिल्कुल तुम्हारे नाम के जैसा। अब जैसे ही तारा ने तराना के नाम पर ध्यान दिया, उसे वाकई इस बात का एहसास हो गया था कि वाकई उसकी बेटी का नाम बड़ा ही खूबसूरत है। तभी तारा ने अपनी नाराजगी खत्म करते हुए कहा था, करिश्मा मॉम, नाम तो बहुत प्यारा है, लेकिन मैं चाहती थी कि अमन सर और मैं, हम दोनों मिलकर हमारी बेटी का नाम रखते। तभी अमन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तारा के पास आया था और कहने लगा था, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और तुम भी शायद इतना प्यारा नाम हम लोग नहीं रख पाते जितना प्यारा नाम सभी जिन्नों ने हमारी बेटी को आशीर्वाद के तौर पर दिया है। तभी तारा ने भी मुस्कुराकर अमन के इस फैसले का स्वागत किया था, और जल्दी ही वो लोग अपने अपने कमरे में जाने लगे थे। करिश्मा जी ने खासकर तारा को ये बात समझा दी थी कि भूल कर भी शॉल को उसके जिस्म से अलग ना करे, क्योंकि कब कौन सी काली शक्ति तराना बेटी पर हमला ना कर दे, इसके बारे में किसी को कोई एहसास नहीं है। तभी तारा परी ने करिश्मा जी की बात मान ली थी, और तारा अमन जैसे ही तराना को अपने कमरे में लेकर जाने लगे, तभी तो पूरी छह काली आंखें जो एकदम लाल आंखों के साथ तराना को ही देख रही थीं, वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी थीं। वो आंखें, दो आंखें तो राक्षस की माँ के भेजे हुए शस्त्र की थीं, दो आंखें काली शक्तियों के महागुरु ने जो अमित के अंश को लेकर गया था, जो प्रेमा का बेटा था, उसकी थीं, और दो आंखें भी दूसरे अमित के बेटे, जिसे मल्लिका ने जंगलों में उसकी माँ को पालने के लिए दिया था, उसकी थीं, जो 3 साल का था और एक नौजवान था। उनकी निगाह अगर किसी पर थी तो सिर्फ और सिर्फ तराना पर थी, और वो तराना को हर हाल में मारना चाहते थे, क्योंकि अभी तराना केवल एक दिन की थी, केवल 14 दिन बचे थे, 14 दिन के भीतर भीतर उन्हें तराना को हर हाल में मारना ही था। अगर उन्होंने 14 दिनों के अंदर अंदर तराना को नहीं मारा तो तराना को मार पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। अमन और तारा जल्दी ही तराना को अपने कमरे में ले आए थे। तारा परी की नज़र अपनी बेटी पर से हट ही नहीं रही थी। उसकी बेटी भी अपनी माँ को देखकर मुस्कुराई जा रही थी। उसके गालों पर पड़ने वाले डिम्पल तारा और रह रहकर बहुत ही ज़्यादा प्यार और क्यूट लग रहे थे। बार बार कभी वो अपनी बेटी के बालों को छू रही थी तो कभी उसके गालों को छू रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ सिमटकर उसकी गोद में आ गई हों। तारा को उसके बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। वो सोचने लगी थी कि काश उसकी ज़िंदगी यहीं रुक जाए, और इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में ना किसी तरह का कोई दुख आए, ना गम आए, ना उसे परीलोक जाना पड़े, ना, और ना उसे राक्षस से मुकाबला करना पड़े, और ना ही अमन उससे दूर जाए। तो कहीं ना कहीं तारा को इस वक्त अपनी फैमिली एकदम हैप्पी फैमिली लग रही थी, लेकिन ये हैप्पी फैमिली की लाइफ तारा की केवल 14 दिनों तक ही जी सकती थी, वो भी तराना की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। वो अच्छी तरह से जानती थी, अगर ये जादुई शॉल एक पल के लिए भी तराना उसके ऊपर से हटा तो तराना की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए तारा परी के लिए 14 दिन भले ही एक हैप्पी फैमिली की तरह उसे गुजारने थे, लेकिन ये 14 दिन साथ ही साथ उसकी बेटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। वहीं कुलगुरु ने प्रेमा बेटे को साफ साफ कह दिया था कि वो एक बार जादुई शॉल का भी जादू तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन तब जब जिन अंश उसमें ना हो। लेकिन वो प्रेमा का बेटा ये बात भूल गया था, क्योंकि उसने उसे कुछ इस तरह की शक्तियां दी थीं जिसकी बदौलत वो हर तरह की सहूलियत रखता था और हर तरह से किसी का भी मुकाबला कर सकता था। तो इसीलिए जैसे ही उसने हुक्म दिया, तब काली शक्तियों के मालिक अमित के बेटी ने उस जादुई हरे रंग की शॉल को घूरना शुरू कर दिया था, और अपनी आंखों से कुछ चिंगारी निकालकर जैसे ही उसने शॉल पर हमला किया, तारा परी के हाथों में करंट सा लगा था, और वो करंट अमन ने भी महसूस किया था। तब वो दोनों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल को देखते हुए अपने आसपास देखने लगे थे, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि वो काली शक्तियों का बच्चा यानी कि प्रेमा का बेटा था, इस वक्त उन लोगों के बेड के ठीक सामने खड़ा हुआ था, लेकिन उसने काली शक्तियों के महागुरु के जादुई शक्तियों के कारण खुद को अदृश्य कर रखा था, जिसकी वजह से उसे कोई भी देख नहीं पा रहा था। तो इसीलिए अब जैसे ही उसने जिन अंश पर वार किया, तब उस जादुई शोल में से अजीब सी रंग बिरंगी रोशनी निकली थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों में उल्टा उसी की शक्ति एक बार फिर आ गई थी, जिससे उसकी आंखों में काफी ज्यादा जलन होने लगी थी। और उसके पास अब वहां से जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अब जैसे वो वहां से वापस सीधा काली शक्तियों के महागुरु के पास पहुंचा था, काली शक्तियों के महागुरु ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा था, मैंने तुम्हें ये बात साफ साफ समझाई थी कि जब तक वो जिन अंश उस जादुई हरे रंग की शॉल में है, तब तक तुम उस पर किसी तरह का कोई वार मत करना, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। अब तुम मेरे लिए टोटली वेस्ट हो चुके हो, इसीलिए मजबूरन अब मुझे तुम्हें यहाँ से वापस भेजना ही होगा और एक बार और अच्छी तरह से सभी काली शक्तियों की ट्रेनिंग देनी होगी। उसी के बाद तुम सभी सफेद जिन्नातों से लड़ने के लिए तैयार हो पाओगे। अब मुझे कुछ और सोचना होगा कि आखिरकार मैं किसके द्वारा उस जिन अंश को खत्म करवाऊं, क्योंकि वो जादुई शॉल जिसमें करिश्मा जी ने जिन अंश को लपेटा था, वो कोई आम शॉल नहीं थी। वो शॉल के अंदर जैसे ही जिन अंश डाला जाता है, तो शॉल में हजारों लाखों की तादाद में जिन्नातों की शक्तियां मौजूद होती हैं। वो जिसकी जब करिश्मा की जिन अंश को जिन्नातों की दुनिया में लेकर गई थी, तो उसकी सभी शक्ति एक्टिवेट हो चुकी थी, क्योंकि जितने भी जिन उस वक्त वहां मौजूद थे, सभी ने जिन अंश को ढेर सारे आशीर्वाद दिए थे, और जो आशीर्वाद उन्होंने दिए थे, वो सीधा शक्ति के रूप में उस शॉल में सिमटने लगे थे, जिससे उस शॉल के अंदर सभी काली ताकतों से लड़ने की और उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाने की शक्ति थी। वहीं काली शक्ति के मालिक अमित का बेटा उस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था, हालांकि वो अभी केवल 8 से 7 साल का था, लेकिन उसका गुस्सा, उसकी नफरत इतनी ज्यादा थी जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। और बचपन से ही उसके अंदर अब जिन अंश के लिए नफरत जन्म ले चुकी थी, क्योंकि अब काली शक्तियों का मालिक अमित का अंश एक इंसानी औरत के पेट से जन्म लिया था, यानी कि प्रेमा के पेट से, तो इसीलिए वो आधा इंसान और आधा काली शक्तियों का मालिक था। लेकिन अब महागुरु ने उसके अंदर सफेद जिन्नातों को लेकर इतने ज्यादा नफरत भर दी थी कि जिसकी बदौलत वो पूरी तरह से काली शक्तियों में डूब चुका था। हालांकि तारा ने उसकी माँ पर कितने ज्यादा एहसान किए थे, इसके बारे में उसे दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था।
अगर तारा परी नहीं होती तो शायद आज वो भी जिंदा नहीं होता, लेकिन काली शक्तियों के महागुरु ने सारी बातें उससे छुपाकर उसे सिर्फ और सिर्फ एक खूंखार काली शक्तियों का महारक्षक बना दिया था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि ये महारक्षक आगे चलकर उनके कितना ज्यादा काम आ सकता है, तो इसीलिए कई महागुरु अपने हाथ से किसी तरह का कोई मौका नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन फिलहाल जिन अंश को मारने के लिए उसे किसी और हथियार की जरूरत थी, क्योंकि उसने ज्यादा ही जल्दबाजी की थी, जिसकी वजह से उसने उन पर हमला कर दिया था, वो भी उस वक्त जिस वक्त वो हरे रंग के शॉल में थी। तो इसीलिए काली शक्तियों के महागुरु ने उसे और शक्तियां और तप ग्रहण करने के लिए एक ऐसे जादुई पेड़ में कैद कर दिया था जो पूरे 21 वर्षों तक उसी के अंदर कैद रहने वाला था और कितने ही सारी काली शक्तियां ग्रहण करने वाला था, क्योंकि काली शक्तियों के महागुरु इस बार किसी तरह की कोई कच्ची गोली नहीं खेलना चाहते थे। भले ही अमित के मामले में उनके हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा था, लेकिन अमित का जो ये अंश था जिसके अंदर इंसानी खून भी था, तो उसे वो कितना ज्यादा ताकतवर बना सकते थे कि इसके बारे में कोई दूर से दूर तक अंदाजा नहीं लगा सकता था। भले ही जिन अंश तो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन 21 वर्षों बाद जैसे ही वो प्रेमा का बेटा उस पेड़ से अपना कड़ा तप करके निकलेगा, उसके बाद वो जिन अंश को आराम से कड़ी टक्कर दे सकता था। वेल, वहीं दूसरी ओर तारा और अमन को जैसे ही करंट का एहसास हुआ और इस बात का एहसास हो गया था कि जरूर उनकी बेटी पर हमला हुआ है, और वो अपने आसपास अच्छी तरह से देखने लगे थे। इतना ही नहीं, अमन तो गुस्से से आग बबूला हो उठा था और चिल्लाकर कहने लगा था, इस वक्त जो कोई भी काली शक्ति हमारे सामने मौजूद है, वो तुरंत अपने असली रूप में हमारे सामने आए, और जिसने भी हमारी बेटी पर हमला करने की कोशिश की है, वो तो चुपचाप जाकर अपने आप को हमारे हवाले कर दे, वरना हम अगर उसे खोजने पर लग गए तो उसका कहीं पता पता तक नहीं मिलेगा। अमन ने सीधे काली शक्तियों को धमकी दी थी, लेकिन उस वक्त प्रेमा का बेटा यानी कि काली शक्तियों के मालिक अमित का अंश तो ऑलरेडी वहां से जा चुका था, इसीलिए अब वहां पर अमित का दूसरा अंश, जो कि मल्लिका ने उसकी माँ को पालने के लिए दिया था, वो मौजूद था। साथ ही साथ उस राक्षस का भेजा हुआ वो शस्त्र था जो कि सफेद जिन अंश को मारने के लिए आया था। तो इसीलिए जैसे ही उन्होंने अमन की धमकी सुनी, तो एक बार को तो वो दोनों भी थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन उन्हें अपनी अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से भरोसा था, तो इसीलिए कोई भी अमन के सामने नहीं आया था। अब तो अमन का गुस्से के मारे बुरा हाल हो चुका था, और जल्दी ही अमन ने अपनी आंखें बंद करके कुछ अपने कड़े मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था। अब अमन अमन हर हाल में उसे खोजना चाहता था जिसने भी उसकी बेटी पर वार किया था। अमन तो वैसे ही अपनी बेटी को लेकर काफी ज्यादा पजेसिव हो चुका था, तो इसीलिए वो अपनी बेटी पर किसी तरह की कोई आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और वो ये भी समझ चुका था कि अगर उसकी धमकी देने के बाद भी वो काली शक्ति जो कि उसके आसपास है बाहर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब साफ है कि उसके पास जरूर काफी ज्यादा शक्तियां होगी। इसीलिए अमन ने तारा को बेटी को एक तरफ पकड़कर बैठने के लिए कहा था, और जल्दी ही उसने अपनी आंखों में अंगारे भरकर अपने पूरे कमरे को पूरी तरह से देखना शुरू कर दिया था। अब जैसे जैसे अमन पूरी तरह से अपने कमरे को देख रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखों में चुभन सी होने लगी थी, क्योंकि वो राक्षस की माँ का भेजा हुआ शस्त्र भी उस वक्त वहां मौजूद था, जिसकी वजह से अमन उसका तब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अमन काली शक्तियों से तो आसानी से लड़ सकता था, लेकिन उस राक्षस की शक्तियां काफी ज्यादा थीं, और उसकी माँ ने जो अपना शस्त्र भेजा था इस बार उसने पूरी तरह से उसे तैयार करके भेजा था, जिसकी बदौलत अमन को वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन क्योंकि अगर इस वक्त अपनी सारी शक्तियां प्रयोग कर रहा था सिर्फ और सिर्फ उन काली शक्ति को देखने के लिए, तो इसीलिए अब अमन की आंखों में अब चुभन होने लगी थी, और वो ज्यादा देर तक वहां पर उस शस्त्र को खोज नहीं पाया था। अब तो तारा परी पूरी तरह से हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे अमन की शक्तियों का अच्छी तरह से अंदाजा था, तो वो सोचने लगी थी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा जो इस तरह से वो काली शक्ति अमन के सामने नहीं आ पा रही है। कहीं वो राक्षस ने तो कोई चाल नहीं चलती है। कहीं ना कहीं जैसे ही ये बात तारा परी के दिमाग में आई, अचानक से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसे राक्षस से अब सारी चीज समझ सकता है, बोल सकता है, इतना ही नहीं कड़े मंत्रों का उच्चारण कर सकता है। लेकिन अभी वो पूरे जिस्म का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो अभी भी तारा परी के उसे बंधन में है। जब तक वो अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएगा, तब तक वो मूर्छित अवस्था में ही माना जाएगा, और तारा परी को मूर्छित अवस्था में ही अपनी बेटी को उसके सामने ले जाकर खड़ा करना है, और तब उसकी बेटी उसकी आसानी से जान ले सकती है। अगर वो राक्षस उसकी बेटी के परीलोक में जाने से पहले पूरी तरह से होश पर आ गया, तो शायद उसकी बेटी के लिए भी मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन तारा ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी बेटी हर मुश्किल से निकलने में अब पूरी तरह से समर्थ है।